नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में रूस सरकार कोई चांस लेने के मोड में नहीं है। रूस की एक कोर्ट ने एप्पल और विकिपीडिया के बाद गूगल को निशाने पर लिया है। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े वीडियो को यूट्यूब से न हटाने के लिए गूगल पर $32,000 का जुर्माना लगाया है। रूस की कोर्ट ने अगस्त माह में विकिमीडिया और एप्पल के खिलाफ इसी तरह का कदम उठाया था, दोनों पर जुर्माना थोपा गया था। एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक रूस की अदालत ने यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी हटाने में विफल रहने के लिए गूगल पर बृहस्पतिवार को 30 लाख रूबल का जुर्माना लगाया। खबर के मुताबिक अदालत ने पाया कि गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब ने संघर्ष के बारे में गलत जानकारी वाले वीडियो को नहीं हटाया है। एजेंसी के अनुसार गूगल को उन वीडियो को भी नहीं हटाने का दोषी पाया गया जो नाबालिगों के लिए उपयुक्त नहीं है। रूस की एक अदालत ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में झूठी जानकारी समझी जाने वाली सामग्री को हटाने में विफल रहने के लिए एप्पल और विकिपीडिया पर भी अगस्त की शुरुआत में जुर्माना लगाया था। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के उस द्वीप पर एक हवाई पट्टी का संभवतः निर्माण कर रहा है जिस पर वियतनाम और ताइवान भी दावा करते हैं। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में ये जानकारी सामने आई है। पारासेल द्वीप समूह के टाइट्रन द्वीप पर जारी कार्य स्प्रेटली द्वीप समूह पर 7 मानव निर्मित द्वीपों के निर्माण की तरह ही प्रतीत होता है। ये मानव निर्मित द्वीप हवाई पट्टियों, गोदी और सैन्य प्रणालियों से युक्त है। टाइट्रन द्वीप पर निर्माण कार्य का पैमाना अभी उतना व्यापक प्रतीत नहीं होगा। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। वो इस पर अन्य देशों के दावों को खारिज करता है और उसके दावे को अमान्य करार देने वाले अंतर्राष्ट्रीय फैसले की अवहेलना करता है। प्लैनेट लैब्स PBC से मिली उपग्रह तस्वीरों का द एसोसिएटेड प्रेस ने विश्लेषण किया। इन तस्वीरों में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य अगस्त की शुरुआत में होता दिख रहा है। समाचार वेबसाइट द ड्राइव ने मंगलवार को उपग्रह तस्वीरों को लेकर सबसे पहले जानकारी दी। प्रतीत होता है कि रनवे 600 मीटर से अधिक लंबा है जो टर्बोप्रॉप विमान और ड्रोन के लिए काफ़ी होगा, लेकिन लड़ाकू विमान या बम वर्षकों के लिए इतनी लंबाई अपर्याप्त है। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यापारी तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश डेल एस फिशर ने 10 अगस्त के अपने आदेश में लिखा, अदालत ने एक अलग आदेश जारी कर तहव्वुर राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी है। बहरहाल राणा ने इस आदेश के खिलाफ 9th सर्किट कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उस पर सुनवाई होने तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन करने का फैसला किया, जिससे आम चुनाव में देरी हो सकती है। संसद भंग होने के बाद 90 दिन की संवैधानिक अवधि में चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की घोषणा पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के कुछ ही समय बाद आई है। ये सरकार आम चुनाव तक आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का शासन संभालेगी। नाइजीरिया के उत्तर मध्य क्षेत्र में सशस्त्र गिरोहों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले और मौके पर भेजे गए एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक अधिकारी और कम से कम 36 सैनिक मारे गए हैं, नाइजीरिया की सेना ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी। नाइजीरिया के नागरिकों ने AP को बताया कि नाइजर राज्य के बुशीशी जिले में सप्ताह की शुरुआत में हुए संघर्ष के बाद सशस्त्र गिरोहों ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके बाद जानकारों ने देश के सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी क्षेत्र में बंदूकधारियों का आधिपत्य बढ़ने की चेतावनी दी है। रक्षा प्रवक्ता मेजर जनरल एडवर्ड बुबा ने संवाददाताओं को बताया कि नाइजर राज्य में सैनिक सोमवार को एक अभियान चला रहे थे, तभी सशस्त्र गिरोहों ने धावा बोल दिया। स्वीडन ने बृहस्पतिवार को देश में आतंकवादी खतरे के स्तर को बढ़ाकर दूसरे उच्चतम स्तर पर कर दिया। देश में हाल ही में कुछ इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा कुरान की प्रतियां जलाए जाने की घटना के बाद आतंकवादी खतरे के स्तर को एक पायदान बढ़ाकर दूसरे उच्चतम स्तर पर कर दिया है। स्वीडन की घरेलू सुरक्षा सेवा SAPO ने कहा कि समग्र सुरक्षा स्थिति खराब हो गई है और देश में आतंकवाद के खतरे का स्तर इस समय 4 पर है और इसे एक स्तर बढ़ा दिया गया है। स्वीडन ने हाल ही में कुरान की प्रतियां जलाए जाने की घटना के बाद विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा था। पुलिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी है। कई पश्चिमी देशों की तरह स्वीडन में कोई ईश निंदा कानून नहीं है जिसके तहत धार्मिक ग्रंथों को जलाने पर रोक हो। अधिकारियों ने बताया कि स्वीडन ने सीमाओं और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।